हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अबीर का आदमी ज़ोया के घर से बुके लेकर वापस आ गया था। अबीर उसका बेसब्र होकर इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही वो आदमी अबीर के पास पहुंचा, अबीर ने कहा, क्या हुआ, क्या कहा उसने? वो आदमी सिर झुकाए खड़ा रहा। अबीर राठौड़ को सच बताने की उसमें हिम्मत नहीं थी, लेकिन बोलना तो था ही। अबीर ने इस बार कड़ी आवाज में पूछा, तुम्हें क्या सुनाई नहीं दे रहा है? मैंने पूछा, क्या कहा उसने? उस आदमी को पता था, अगर तू अब भी नहीं बोला तो पक्का आज तेरा बॉस तेरी जान ले लेगा। अबीर के इस तरह पूछने पर उसने बोला, एक्चुअली बॉस, मैं मैडम अब वहाँ नहीं है, उस आदमी ने हकलाते हुए कहा। अबीर, मतलब क्या है तुम्हारा, साफ साफ बोलो। इतना कहते ही अबीर ने उसके माथे पर गन लगा दी और बोला, ठीक तरीके से बता हुआ क्या है, वरना 6 की 6 गोलियां तेरे भेजे में उतार दूंगा। अबीर के इस तरह से धमकी देते ही उस आदमी ने अपनी पैंट गीली कर दी थी और वो रोने लगा था। फिर वो रोते रोते बोला था कि बॉस, वो मैडम कल रात ही वो फ्लैट खाली करके कहीं चले गए हैं। अबीर ने जैसे ही ये सुना, उसके दिल पर एक जोरदार धक्का सा लगा था। उसे तो लगा था ज़ोया बुके में छिपा उसके प्यार का इजहार पढ़ लेंगी और फिर वो आज ही उससे एंगेजमेंट्स करेगा और कल शादी। अबीर राठौड़ ने देर करना तो कभी सीखा ही नहीं था। अभी तक लड़की ने हाँ ना का जवाब भी नहीं दिया था और अबीर राठौर उससे एक ही दिन में शादी के सपने भी बुनने लगा था। ज़ोया के अचानक चले जाने से अबीर को अपने अंदर कुछ टूटता हुआ सा महसूस होने लगा था। अबीर ने उस आदमी को तो कुछ नहीं कहा और सीधा अपने कमरे में चला गया। अपने कमरे में जाकर उसने ज़ोया का दिया जख्म कुरेदना शुरू कर दिया था। फिर काफी देर तक वो सोचता रहा और फिर अचानक से वो उठा और उसने अपने आदमियों को उसका पता लगाने का ऑर्डर दे दिया था। अब अबीर राठौड़ का ऑर्डर था जो 24 आवर्स से पहले पूरा होना हर हाल में जरूरी था, वरना और आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि अबीर राठौड़ का दिया गया ऑर्डर टाइम पूरा नहीं किया गया हो। रोहित अबीर के सब आदमियों को लीड कर रहा था और ज़ोया के मिलने के चांसेस कहाँ हो सकते हैं वो सब मिलकर अंदाज़ा लगाने लगे थे। लेकिन ये बात कोई नहीं जानता था कि जिस ज़ोया को वो लोग पूरे शहर भर में ढूंढ रहे हैं वो अबीर राठौड़ के शानदार बंगले के सामने बने अपार्टमेंट में ही रहने आई है। जी हाँ, अक्रम ने अनजाने में अबीर राठौड़ की सोसाइटी में ही फ्लैट खरीद लिया था। अक्रम को वहाँ की सिक्योरिटी ज़्यादा पसंद आई थी। अक्रम ये नहीं जानता था अबीर राठौड़ के घर के आसपास 5 किलोमीटर तक सभी जगहों की सिक्योरिटी रहती थी और अक्रम का फ्लैट तो बिल्कुल अबीर राठौड़ के बंगले के ठीक सामने था। बस केवल बीच में अपार्टमेंट के पार्क का फासला था और ज़ोया के कमरे की खिड़की से अबीर राठौड़ का बंगला और उसका कमरा साफ देखा जा सकता था। अबीर राठौड़ ने पूरे शहर में उन्हें ढूंढने का बोल दिया था और जितने भी इंडियन लोगों की शादी होने वाली थी उनकी डिटेल्स भी निकलवाने को बोला था, क्योंकि मॉल में ज़ोया शादी का लहंगा पहने हुए थी। इसका मतलब साफ था कि ज़रूर उसके परिवार में किसी की शादी होने वाली थी और शादी की शॉपिंग करने के लिए ही वो उस दिन मॉल आई थी, अबीर ने अंदाज़ा लगाया था। लेकिन वो खुद भी शांत नहीं बैठ सकता था, इसलिए वो भी उसे ढूंढने निकल पड़ा था। वहीं ज़ोया अगली सुबह अपने कमरे की खिड़की खोलकर सामने पार्क से आती ठंडी ठंडी हवाओं को महसूस कर रही थी और इसी बीच अनायास ही ज़ोया का ध्यान पार्क के उस पार बने एक बड़े ही शानदार बंगले की ओर चला जाता है। ज़ोया मन ही मन, ओह कितना खूबसूरत है ये, काश मैं एक बार इस बंगले में जा पाती, इसे करीब से देख पाती। अभी ज़ोया सोच ही रही थी कि तभी उसे रिया की आवाज़ सुनाई दी और साथ ही अक्रम की भी। उन दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो रही थी। ज़ोया उनकी तेज़ आवाज़ सुनकर जल्दी से बाहर गई तो उसने देखा वो दोनों हॉल में सोफे पर साथ में बैठे हुए थे और एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे। ज़ोया तुरंत उन लोगों के पास पहुंच गई और बोली, यहाँ हो क्या रहा है, आप दोनों किस बात पर झगड़ा कर रहे हो? तब रिया ज़ोया के पास जाकर खड़ी हो गई और बोली, ज़ोया दी, आपको जो भी पूछना है आप अपने भाई से पूछें, आपको पता है ये क्या कह रहे हैं? ज़ोया, हाँ बताओ क्या बात है, क्या कह रहे हैं अक्रम भाई? वो ज़ोया दी, अक्रम कह रहे हैं कि वो और मैं आज शाम को कागजी शादी करेंगे, कोई रस्म नहीं होगी, केवल कोर्ट मैरिज होगी और वैसे भी यहाँ इंडियन तरीके की शादी मान्य नहीं है, अगर हम इंडियन शादी कर भी लेते हैं तो भी हमें उसे रजिस्टर कराना ही होगा। रिया बोलते बोलते सुवांसी हो गई थीं। अक्रम, जोया, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, हम लोगों के लिए यही करना सही रहेगा। इससे पहले कि जोया कुछ बोलती, रिया ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और बोली, देखा आपने जोया दी, ये क्या कह रहे हैं, हमने जो इतनी शॉपिंग की, सुंदर सुंदर लहंगे खरीदे, हल्दी के फंक्शन के लिए तैयारी की, वो सब मिट्टी में मिल गई, अब कुछ भी नहीं होगा। जोया उन दोनों की बात बड़े ही ध्यान से सुन रही थी और उसने जब वो दोनों एक साथ अपनी अपनी बात बोल रहे थे, तब जोया ने अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिए और जोर से चिल्लाई, बस स स स स स स स स। जोया की तेज आवाज सुनते ही वो दोनों चुप हो गए और जोया की ओर देखने लगे। जोया ने कहा, आप दोनों यहाँ बैठो। तब अक्रम ने कुछ बोलने की कोशिश की पर जोया ने उसे रोक दिया और बोली, एक और वर्ड नहीं भाई, बहुत बोलिए आप दोनों, अभी आप दोनों बिल्कुल कुछ नहीं बोलोगे, ये सब क्या है, आप लोग बच्चे हो क्या, बच्चों की तरह झगड़ रहे हो। तब रिया रोने सी की सूरत में बोली, जोया दी, आप ही बताएं हम क्या करें। जोया ने कहा, अक्रम भाई ठीक कह रहे हैं, अगर हम ये शादी लोगों के बीच करते हैं तो जरूर हमारे दुश्मन हम तक पहुंच जाएंगे। जोया की बात सुनकर अक्रम के मुंह पर एक स्माइल आ गई और बोला, देखा तुमने, मेरी बहन ने मेरे हक में फैसला किया है। वहीं जोया, भाई अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, क्योंकि बात रिया की भी गलत नहीं है, एक लड़की की शादी को लेकर बहुत सपने होते हैं, हम रिया से उसका ये सपना तो छोड़ने को नहीं कह सकते ना, इसलिए हम सारे फंक्शन भी करेंगे। जैसे ही जोया ने ये कहा, रिया खुशी के मारे उछल पड़ी और जोया से चिपक गई। तब अक्रम, पर जोया कैसे होगा ये सब, तुम तो सब कुछ जानती हो, फिर कैसे हम लोग ये सब कर सकते हैं। जोया ने कहा, भाई अब हम न्यू जगह पर हैं और आपने देखा इस अपार्टमेंट का पार्क कितना खूबसूरत है, हम बिल्डिंग के लोगों से बात करके पार्क में हल्दी मेहंदी और शादी का फंक्शन कर सकते हैं, और यहाँ तो हमें कोई जानता भी नहीं है, तो हम लोग अपार्टमेंट में से कुछ लोगों को भी अपनी खुशियों में शामिल कर लेंगे। जोया की बात सुनकर अक्रम सोच में पड़ गया, क्योंकि जोया हर लिहाज से सही कह रही थी, ऐसा तो हो सकता था और रिया का मन भी रह जाएगा, और वैसे भी यहाँ की सिक्योरिटी तो काफी ज्यादा टाइट है, कोई गैर आदमी यहाँ आ ही नहीं सकता था। अक्रम रिया की बात सुनकर काफी खुश हो गया और बोला, वाकई ये बहुत अच्छा आइडिया है, अगर ऐसा है तो मैं आज ही बिल्डिंग के हेड से बात कर लेता हूँ। जोया और रिया दोनों खुश हो गईं और दोनों खुश होकर अक्रम के गले लग गईं। वहीं दूसरी ओर अनुराधा ने अपना नया जाल बिछा दिया था। अनुराधा का एक ही मकसद था, वो था शमशेर सिंह को किडनैप करके वो जरूरी कागज निकलवाना, जिनकी वजह से उसकी माँ की इज्जत और जान गई और साथ ही उसके पिता हमेशा के लिए अपाहिज हो गए थे और वो खुद न जाने कितने मर्दों के हाथों अपनी इज्जत गंवा चुकी थी। अनुराधा ने उस विदेशी अफ्रीकी को इस काम के लिए हायर किया था, लेकिन शमशेर सिंह को किडनैप करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। अनुराधा अपनी इस काम के लिए अनगिनत बार कोशिश कर चुकी थी, लेकिन वो हर बार फेल हुई थी। अनुराधा ने इस बार एक नया प्लान रेडी किया था। उसका इरादा आने वाली 26 जनवरी को जब शमशेर सिंह आर्मी हेडक्वार्टर के पास बने एक छोटे से स्कूल में झंडा फहराने जाएंगे, उस वक्त वो उन्हें किडनैप करवाएगी। बस अनुराधा को अब आने वाली 26 तारीख का इंतजार था। न जाने उसे क्यों लगता था कि इस बार वो जरूर कामयाब हो जाएगी। अनुराधा ने अपना सारा प्लान उस विदेशी अफ्रीकी को बता चुकी थी और सोने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन अनुराधा जब भी आंखें बंद करती, अरमान का चेहरा उसके सामने आ जाता और वो उठ बैठती। जब से अनुराधा ने अरमान को देखा था, उसे अरमान की तलब होने लगी थी। बचपन में ही उसके साथ जबरदस्ती हुई थी और फिर जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उसके अंदर नफरत और बदला भी बड़ा होता रहा। धीरे धीरे अनुराधा ने बॉयफ्रेंड बनाने शुरू कर दिए और उनके साथ रातें बिताने लगी, और अपनी अपने बॉयफ्रेंड को पूरी लत लगाने के बाद वो अपना काम करने को कहती। शमशेर सिंह को किडनैप करने वाला प्लेन उसके बनाए हुए 3 बॉयफ्रेंड ने शमशेर सिंह को किडनैप करने की कोशिश भी की, लेकिन वो लोग आर्मी के हत्थे चढ़ गए। और अब लास्ट में अनुराधा ने विदेशी अफ्रीकी की मदद लेने का सोचा, लेकिन उस अफ्रीकी की नीयत अनुराधा पर बिगड़ गई। उसने इस काम को करने के लिए पहले अनुराधा की 2 रातें मांगी, एक काम शुरू करने से पहले और दूसरी काम खत्म होने के बाद। अनुराधा उस अफ्रीकी की पहली शर्त पूरी कर चुकी थी, लेकिन उसी दिन राजवीर ने उस होटल पर रेड कर दी थी और तब अनुराधा को उस अफ्रीकी को पुलिस से बचाने के लिए राजवीर रिझाना पड़ा और उसके साथ उसे मजबूरी में रात गुजारनी पड़ी थी। लेकिन जब से उसने पहली बार अरमान को देखा था, उसने अपने आप को अरमान की ओर खिंचता सा पाया था और वो उस दिन ठाकुर फार्म हाउस में ही उसके साथ सोना चाहती थी, लेकिन अरमान ने उसे बिल्कुल न्यूट देखने के बावजूद भी उसे हाथ नहीं लगाया था। अनुराधा सोच रही थी कि अब जब वो पहली बार खुद से किसी आदमी के साथ सोना चाहती थी, वो आदमी उसकी ओर देख तक नहीं रहा था। तब अनुराधा मन ही मन में भी देखती हूँ अरमान ठाकुर, कब तक दूर रहते हो तुम मुझसे, ये सोच कर वो हंसने लगी थी। अरमान सी वजह से ही राजवीर ने उसके साथ जबरदस्ती की थी, तो अनुराधा ने डिसाइड किया था कि वो अब अरमान से उसको ट्रैप करने का बदला लेगी, लेकिन अपना काम पूरा करने के बाद। प्लीज लाइक कमेंट करें, आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा।